लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय देवदूत प्रार्थना में संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने 6 जुलाई को संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi ci ricorda l'importanza della missione a cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo la propria vocazione e nelle situazioni concrete in cui il Signore lo ha posto.
Priye bhaiyo evam behno, shubh रविवार। आज का सुसमाचार हमें प्रेरिताई की महत्वपूर्णता के बारे में याद दिलाता है, जिसके लिए हम सभी बुलाए गए हैं, जिसे ईश्वर ने हम में से हर किसी को और कुछ को विशेष परिस्थितियों के लिए नियुक्त किया है। संत पापा ने कहा कि यीशु अपने 72 शिष्यों को प्रेषित करते हैं। यह सांकेतिक संख्या हमारे लिए इस बात की ओर इंगित कराती है कि आशा का सुसमाचार सबों के लिए है, क्योंकि यह ईश्वर का विस्तृत हृदय है जहां हम फल की बहुतायत को पाते हैं। वास्तव में ईश्वर दुनिया में अपने कार्य जारी रखते हैं, जिससे उनकी संतान उनके प्रेम को अनुभव करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सके। वहीं यीशु हमें कहते हैं, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, अतः फसल के स्वामी से निवेदन करो कि वे मजदूरों को भेजें।
Da una parte Dio, come un seminatore, con generosità è uscito nel mondo a seminare.
तो वहीं दूसरी ओर ईश्वर एक बोने वाले के रूप में दुनिया में और पूरे इतिहास में लोगों के हृदय में अनंत जीवन की चाह रूपी बीज को बोते हैं, एक संपूर्ण जीवन और मुक्ति की चाह जहां हम अपने में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। फसल इस भांति अपने में अत्यधिक है। ईश्वर का राज्य भूमि में एक बीज की भांति विकसित होता है और आज के नर और नारियां, यद्यपि वे अपने को विभिन्न चीजों से बोझिल चिंतित पाते हैं, अपने में एक बड़ी सच्चाई की खोज करते हैं। वे अपने जीवन की अर्थपूर्णता, न्याय और अपने अंतःस्थल में अनंत जीवन की चाह को वहन करते हैं। जबकि दूसरी ओर संत पापा ने कहा,
Sono pochi gli operai che vanno a lavorare nel campo seminato dal Signore.
हालांकि हम कुछ एक मजदूरों को पाते हैं जो ईश्वर के द्वारा बोए गए खेतों में जाते हैं, वे थोड़े ही हैं जो यीशु की निगाहों से यह अंतर स्थापित करने के योग्य होते हैं कि अच्छी फसल पककर लुनने हेतु तैयार हो गई हैं। ईश्वर हमारे जीवन में और मानवीय इतिहास में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस रहस्य को समझ पाते हैं। वे रुकते और ईश्वर के उपहार को अपने में ग्रहण करते और उसे दूसरों के संग साझा करते हैं।
Cari fratelli e sorelle, la Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un'etichetta esteriore.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा, कलीसिया और विश्व को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने धार्मिक उत्तरदायित्वों को इस भांति पूरा करते हैं मानो कि वह सिर्फ एक बाह्य चीज है। हमें उन मजदूरों की जरूरत है जो प्रेरिताई हेतु जरूरी स्थलों में कार्य करने को तैयार हैं। उन प्रिय शिष्यों की भांति जो ईश्वर के राज्य का साक्ष्य सब जगह देने को उत्सुक हैं। शायद ऐसे अस्थाई ख्रिस्तियों की कोई कमी नहीं है जो कभी कभी किसी धार्मिक आधार पर कार्य करते हैं या छिटपुट आयोजनों में भाग लेते हैं, लेकिन कुछ हैं जो सदैव रोज दिन ईश्वर की दाखबारी में कार्य करने को तैयार रहते हैं। वे अपने जीवन में सुसमाचार के बीज को विकसित करते जिससे वे उसे अपने परिवारों के संग कार्यस्थलों या अध्ययन अपने सामाजिक संदर्भ और जरूरतमंदों के संग साझा कर सकें। संत पापा ने कहा,
per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali. Serve soprattutto pregare il padrone della messe.
कि ऐसा करने के लिए हमें प्रेरितिक परियोजनाओं के संबंध में बहुत अधिक सैद्धांतिक विचारों की जरूरत नहीं है। इसके बदले हमें फसल के स्वामी से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अतः हमें ईश्वर के संग संबंध स्थापित करने और उनके संग वार्ता में प्रवेश करने हेतु प्राथमिकता देने की जरूरत है। ऐसा करने के द्वारा वे हमें अपना मजदूर बनाएंगे और दुनिया के कार्य क्षेत्र में अपने राज्य का साक्ष्य देने हेतु भेजेंगे। संत पापा ने कहा कि हम कुमारी मरियम से निवेदन करें जिन्होंने उदारता में हाँ कहते हुए मुक्ति के कार्य में सहभागी हुई। वे हमारे लिए निवेदन करें और ईश्वर का अनुसरण करने के मार्ग में हमारे संग चलें, जिससे हम भी ईश्वरीय राज्य के आनंदमय मजदूर बन सकें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सबों को ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुभकामनाएं दी और रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए सबों से विदा ली।
Auguro a tutti di poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito. A tutti, buona domenica!
सुंदर हो तुम सुंदर हो ईश्वर के बच्चे हम सब सुंदर हैं। मैं सुंदर हूँ तुम सुंदर हो ईश्वर के बच्चे हम सब सुंदर हैं। ईश्वर ने हमको प्रेम से
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14 में रविवार शाम को करीब 5 बजे रोम से 25 किलोमीटर दूर परमाध्यक्ष के ग्रीष्मकालीन निवास कास्टेल गंडोल्फो पहुंचे, जहां वे 20 जुलाई तक गर्मियों में आराम करेंगे। कास्टेल गंडोल्फो पहुंचते ही संत पापा की कार के गुजरने के साथ ही तालियां और जय जयकार गूंजने लगे। विल्ला बार्बेरिनी के प्रवेश द्वार के कुछ मीटर दूरी पर संत पापा लियो ने अपनी गाड़ी रोकी और तुरंत लोगों के पास पहुंचे। उनका पहला इशारा कुछ बच्चों को उनके माता पिता की बाहों में आशीर्वाद देना था। फिर उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिलाओं का अभिवादन किया। संत पापा लियो 14वें ने यथासंभव आधिकारिक लोगों से हाथ मिलाया, फिर विला के अंदर चले गए, जहां वाटिकन गवर्नमेंट की अध्यक्ष सिस्टर राफाएला पेट्रिनी, पोंटिफिकल विला के निदेशक धर्माध्यक्ष विंचेंसो वीवा और मेयर अल्बर्टो डी एंजेलिस उनका इंतजार कर रहे थे। जब गेट बंद हो गया तो भीड़ चौक और झील क्षेत्र की ओर तितर बितर होने लगी, तो एक महिला की चीख ने सभी का ध्यान खींचा। संत पापा लियो अचानक विल्ला की बालकनी में दिखाई दिए, वाटिकन सिटी के पीले और सफेद झंडे के पीछे और आईवी से ढके लकड़ी के पैनल के पीछे। संत पापा ने सड़क पर लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ये कुछ पल बहुत उत्साह के थे, जिन्हें स्मार्टफोन और कैमरों ने कैद कर लिया। और रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने उन लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त किया, जिन्होंने टेक्सास में विनाशकारी बाढ़ में अपने प्रियजनों को खो दिया। अंग्रेजी में बोलते हुए संत पापा लियो ने उन सभी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने टेक्सास में ग्वादालूपे नदी में आई बाढ़ के कारण हुई आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया है, विशेष रूप से अपनी बेटियों को जो समर कैंप में थी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शुक्रवार की सुबह भोर से ठीक पहले 45 मिनट में पानी लगभग 8 मीटर बढ़ गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर चीजों को बहा दिया। त्रासदी में कम से कम 81 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हैं, जिनमें 27 लड़कियां शामिल हैं, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र केर काउंटी में एक ख्रिस्तीय समर कैंप में भाग ले रही थी। संत पापा लियो ने देवदूत प्रार्थना के अवसर का उपयोग एक बार फिर दुनिया में शांति की अपील करने के लिए किया। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, शांति सभी लोगों की इच्छा है और यह युद्ध से प्रभावित लोगों की दर्दनाक पुकार है। संत पापा ने प्रार्थनाओं का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे सरकार के नेताओं के दिलों को छू लें और उनके दिमाग को प्रेरित करें, ताकि वे हथियारों की हिंसा की जगह संवाद की खोज कर सकें। संत पापा ने रोम के विश्वासियों के साथ साथ इटली और दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों को भी शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहन के शब्द कहे। इस समय भीषण गर्मी में पवित्र द्वारों को पार करने की आपकी यात्रा और भी अधिक साहसिक और सराहनीय है। अंत में संत पापा लियो ने उल्लेख किया कि वे रविवार दोपहर को रोम के बाहर कास्टेल गंडोल्फो के परमाध्यक्ष निवास पर कुछ दिनों के लिए आराम करने जाएंगे और अपनी आशा व्यक्त की कि सभी लोग छुट्टी के समय का आनंद लें, जो शरीर और आत्मा को तरोताजा कर देगा। उधर संत पापा लियो 14वें को विदेश में उनकी प्रेरितिक यात्राओं के दौरान सहायता के लिए 2 कस्टम निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहन मिले हैं। इतालवी कंपनी एक्सेलेंसिया द्वारा वाटिकन सिटी स्टेट के जेंडरमेरी कोर के सहयोग से विकसित कॉम्पैक्ट वाहनों को बिना विघटित किए लंबी दूरी की उड़ानों पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खबर 6 जुलाई को वाटिकन सिटी स्टेट गवर्नरेट द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आई, जिसमें बताया गया कि वाहन उनके विकास में शामिल टीम के इंजीनियरिंग डिजाइन और उच्च स्तरीय मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, विनिर्माण और कारीगर विशेषज्ञता के संयोजन का परिणाम है। वास्तव में ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैं और न तो शोर करते हैं और न ही प्रदूषण फैलाते हैं। 3 जुलाई को कास्टेल गंडोल्फो में पोंटिफिकल विला में एक निजी बैठक के दौरान संत पापा लियो 14वें को वाहन भेंट किए गए। उधर इसराइल गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते के नवीनतम प्रस्ताव पर हमास के साथ निकटता वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल कतर भेजेगा। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इसराइल हमास के साथ प्रस्तावित युद्ध विराम और बंधक मुक्ति समझौते पर बातचीत के लिए कतर में एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। इस समझौते में कथित तौर पर 60 दिवसीय युद्ध विराम, 10 इजरायली बंधकों को चरणाबद्ध तरीके से रिहा करने और 18 शवों को वापस करने की बात कही गई है, जिसमें इसराइली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों के रिहाई के प्रावधान भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने कतर के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, बावजूद इसके कि कतर संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्यस्थों द्वारा मूल रूप से प्रस्तुत योजना में हमास द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को अस्वीकार्य बताया गया है। हमास ने पहले कहा था कि उसने योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि समूह ने बदलावों का अनुरोध किया है, जिसमें एक प्रावधान भी शामिल है जो स्थायी युद्ध विराम पर वार्ता विफल होने पर शत्रुता को फिर से शुरू होने से रोकेगा। इस बीच गाजा में शनिवार को इजरायली हमलों में कम से कम 45 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि पेट्रोल की कमी के कारण सार्वजनिक सेवाओं के पूरी तरह से ध्वस्त होने की चेतावनी दी जा रही है। इजरायली युद्धक विमानों ने खान यूनिस के पश्चिम में विस्थापित परिवारों को आश्रय देने वाले टेंट को निशाना बनाया। उधर सीरिया और ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू किया, जिसकी निशानी ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी की दमिश्क यात्रा थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।